अथ श्रीमद्भागवतम सातवां स्कंद अध्याय संख्या 6 अध्याय का नाम है प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। श्लोक संख्या 4। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत् आयुर्वेद परम ना तथा विन्दते क्षेमम् मुकुन्द चरणाम्बुजम् तत् शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की तत् उस काम तथा अर्थ के लिए प्रयास प्रयत्न ना नहीं कर्तव्य करणीय यतः जिससे आयुव्यः आयु की हानि परम एकमात्र या अंततः ना तो तथा उस तरह से विन्दते भोक्ता है क्षेमं जीवन का अंतिम लक्ष्य मुकुंद भावबंधन से उद्धार करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणाम्बुजम चरण कमलों को केवल इंद्र तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की हानि होती है और वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। यदि कोई कृष्ण भानामृत को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास से अपने आप को संलग्न रखने से कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य, हम देखते हैं कि भौतिकवादी व्यक्ति अपना भौतिक ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास में दिन रात लगे रहते हैं, और यदि यह मान भी लें कि वे इन प्रयत्नों से कुछ लाभ प्राप्त कर लेते हैं तो भी इससे उनके जीवन की वास्तविक समस्या हल नहीं हो पाती। ना ही वह ये जानते हैं कि जीवन की असली समस्या क्या है। यह आध्यात्मिक शिक्षा की कमी के कारण है। इस युग में विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति अंधकार में है, देहात्म बुद्धि से युक्त है और वह आत्मा तथा उसकी आवश्यकताओं के बारे में कुछ नहीं जानता। समाज के अंधे नेताओं द्वारा गुमराह होकर लोग शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं और वे शरीर को भौतिक रूप से आरामदेह बनाए रखने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसी सभ्यता को धिक्कार है, क्योंकि यह मानवता के जीवन के वास्तविक लक्ष्य को जानने की ओर नहीं ले जाती। लोग व्यर्थ ही अपना समय तथा मानव जीवन रूपी अमूल्य उपहार नष्ट कर देते हैं, क्योंकि जो मनुष्य आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन नहीं करता बल्कि कुत्ते बिल्लियों की तरह मरता है, वह अगले जन्म में पतित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मनुष्य जीवन से निरंतर जन्म मृत्यु के चक्कर में चला जाता है। इस प्रकार वह मनुष्य जीवन के उस वास्तविक लाभ को खो देता है जो कृष्ण भावना भावित होने तथा जीवन की समस्याओं को हल करने के रूप में है। हरे कृष्ण। तो आप सबका आज के इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के हमें शरण प्राप्त है और श्रील प्रभुपाद जी कृपा से हम इतने महत्वपूर्ण इतने अमूल्य ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। ये ज्ञान का राजा है, राज विद्या, जिससे कि हमारे सारे के सारे इल्यूजन, सारे के सारे जो हमारे भ्रम हैं वो नष्ट हो सकते हैं। तो बहुत ही शिक्षाप्रद और बहुत ही एनलाइटनिंग प्रसंग चल रहा है। प्रहलाद महाराज अपने असुर सहपाठियों को शिक्षा दे रहे हैं। कब दे रहे हैं? रिसेस पीरियड में, है ना। चरण अमृत चले गए, उनको कुछ जरूरी काम था, चले गए। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों ने बुलाया प्रहलाद को, चलो तुम भी खेलो। प्रहलाद बोलते हैं, क्या सना व्यर्थ के गाना, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कोई अच्छी बातें बताता हूँ। तो पहली बात क्या बताई, कौमार आचरण प्राग्य धर्मन भगवताम है दुर्लभ मानुषम जन्म तदपि अधर्म अर्थदम। अभी छोटे बच्चे हो लेकिन ये मत सोचो कि खेल कूद के लिए बच्चे हैं, नहीं, तदपि अधर्म, कभी भी मनुष्य जीवन नष्ट हो सकता है, बचपन से ही भगवत धर्म का पालन करो। फिर ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये भगवान से संबंध जोड़ने के लिए मिला है, असली शिक्षा यही है जो हमें भगवान से संबंध जोड़ने में सहायता करे। सुख और दुख, सुख को बढ़ाने के लिए दुख को टालने के लिए प्रयास मत करो। सुखेंद्रिकम दित्यम देह योगिन देही नाम, जो हमारे जीवन में सुख और दुख है वो तो अपने आप आ ही जाएंगे, उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या करें, कौन से प्रयास करें, तो आज बता रहे हैं तब प्रयास हो ना कर्तव्य हो, वो प्रयास मत करो। बहुत हैवी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, पहला हमारा छोटे से बच्चे हैं 5 साल के, बड़ी हैवी इंस्ट्रक्शन है, है ना, हम सबसे भी सहन नहीं होगा। एक तो प्रहलाद महाराज का हैवी उपदेश, ऊपर से श्रील प्रभुपाद जी का हैवी तात्पर्य है। बहुत कमकपी हो रही है, जबरदस्त, प्रभुपाद ने क्या हैवी तात्पर्य दिया और प्रहलाद महाराज ने, छोटा बच्चे हैं और बच्चों को बता रहे हैं, यानी कि उनकी सभा में सब बूढ़े बैठे थे, छोटे बच्चों को इतनी हैवी इंस्ट्रक्शन है। तत्प्रयास होना कर्तव्य हो, नहीं करना, यानी कि देख लो कर सकते हो टाल सकते हो, देख लो जो बेस्ट पॉसिबल है करो, ना कर्तव्य नहीं करना, ना करनी है, नहीं है ये, आपका कर्तव्य है कि वो प्रयास मत करो। किसके लिए प्रयास मत करो, अपने आर्थिक विकास के लिए, अपने जीवन के स्तर को इम्प्रूव करने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करने के लिए, अपने मटेरियल प्रोग्रेस के लिए प्रयास मत करो। कैसा लग रहा है सुनकर, इसी बात कर रहे हो, छोटे बच्चे हमको कैरियर बनाने के लिए उत्साहित करना चाहिए, बच्चे वेरी गुड, बहुत अच्छा मेहनत करो, अच्छे बच्चे बनकर दिखाओ, क्लास में फर्स्ट आओ, वो बोला नहीं प्रयास मत करो, क्यों, बड़े लॉजिकल हो आप, कोई तो कारण तो बताओ। तो प्रहलाद महाराज गुरु हैं, बड़े हैवी इंस्ट्रक्शंस, तो ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, लॉजिकल बता रहे हैं, तत् प्रयास होना कर्तव्य, यत आयुर्व्यय परम, अंततः क्या होगा, परम इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, आयुर्व्यय, आयु का व्यय हो जाएगा, लाइफ वेस्ट हो जाएगी। प्रयास करने के लिए दो चीजें लगती हैं, कोई भी प्रयास हो, समय और शक्ति, समय व्यर्थ शक्ति व्यर्थ, क्यों, हाथ में कुछ नहीं आएगा, ये जो प्रोग्रेस दिखाई दे रही है तो कुछ नहीं आएगा हाथ में। तत् प्रयास हो न कर्तव्य यत आयु व्यय परम, अंततः कुछ नहीं हाथ में आने वाला, क्यों भाई, ना तथा विन्दते क्षेमम, क्योंकि इन प्रयासों से क्षेमम जो हमारा जीवन का असली लक्ष्य है उसको हम प्राप्त नहीं करेंगे। तो फिर क्या करना चाहिए, किसके लिए प्रयास करेंगे, मुकुंद चरणामुजम, जो मुकुंद हैं, जो हमें मुक्ति का आनंद देने वाले हैं, मुक्ति आनंद मुकुंद चरणामुजम, उनके कमल रूपी चरणों की शरण ग्रहण करो, इसके लिए प्रयास करो, उसके लिए प्रयास ना करो, किसके लिए, आर्थिक विकास के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए, देह के सुख के लिए, देह को आराम आराम देने के लिए, इसके लिए प्रयास मत करो, क्योंकि इससे आप अपना जीवन व्यर्थ गवा देंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य है और हम सबके जीवन में उतारने वाला, मनन करने वाला ये श्लोक है, क्योंकि हम जानते हैं जीवन, लाइफ का अर्थ क्या है, एक सीमित अवधि है ना, बिगनिंग एंड एंड, और इसमें मनुष्य जीवन में हम कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, कुछ प्रयास कर सकते हैं, उन प्रयासों से कुछ परिणाम मिलेंगे, है ना। तो कोई भी प्रयास सफल है कि विफल है ये किससे जज होगा, फलम परिचय, उसके फल से, कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वास्तव में श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के तात्पर्य में शिला विशेषांत चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये भौतिक जगत के जितने भी अनुभव हैं वो बोलते हैं ये मानस प्रत्यक्ष है। मानस प्रत्यक्ष का अर्थ है कि केवल मन में ही इसका अनुभव किया जाता है। थोड़ा टेक्निकल बात है, बड़ा समझने की बात है, केवल मन में अनुभव होता है। वास्तव में ये पूरे भौतिक जगत की जो रचना है भगवान ने बड़ी अनविलिंगली, अनिच्छा से की, भगवान की इच्छा नहीं थी इस संसार की रचना करने के लिए। ये जो संसार की रचना हुई है एक जीव की कल्पना और भगवान की महामाया शक्ति के कॉम्बिनेशन से, मिलने से ये संसार की रचना हुई है। जीव भगवान से विमुख होकर भोक्ता बनना चाहता है, ये सच्चाई नहीं है। इसलिए एक नकली जगत बना दिया गया कि इसमें तुम भोक्ता अपने आप को महसूस करो, झूठे अहंकार को दिया गया और वो अपने आप को भोक्ता अनुभव करो। तो इस संसार में जितने भी अनुभव हैं वो मानसिक स्तर पे हैं, वो प्रत्यक्ष नहीं है। यानी कि जितने भी सुख दुख लाभ हानि मान अपयश जितने भी अनुभव हैं ये क्या है, केवल मन में है, वास्तविकता नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं, कैसा हो सकता है? यानी कि सब सब मानसिक है। हाँ, एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने आईआईटी में एडमिशन करी, बहुत मेहनत की, उसका आईआईटी में एडमिशन हो गया, अच्छा जॉब मिल गया, बहुत सुंदर पत्नी, अच्छे अच्छे खिलखिलाते बच्चे, बढ़िया बैंक बैलेंस, मान सम्मान सब जगह, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट। क्या है ये? मानस प्रत्यक्ष, केवल मन का एक सपना। क्यों? इसके बाद क्या होगा, अंततः क्या होगा? मृत्यु सर्व हरस चाहम, मृत्यु सब कुछ हर लेगी। एंड रिजल्ट क्या आया? शून्य। इस संसार के प्रत्येक एक्टिविटी का, प्रत्येक कार्य का अंतिम परिणाम शून्य है, सब कुछ खत्म। तो एक तरह से देखा जाए, जिसके जिसने किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, उसने उस वस्तु को प्राप्त कर भी लिया, और कोई व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाया, दोनों में कोई भी अंतर नहीं रह जाता। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हैव्स एंड नॉट हैव्स। जिस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ था इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसमें और जिसका हो गया था, अंततः मृत्यु जब होगी तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। और जो अगला जन्म प्राप्त होगा, इसकी ये क्वालिफिकेशन काम नहीं आएगी। तो क्या हुआ? उस प्रयास का परिणाम क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ये केवल मानस प्रत्यक्ष है, ये केवल स्वप्न के समान है। अब कोई व्यक्ति स्वप्न के आधार पर प्रत्यक्ष नहीं लेगा ना। आज मैंने सपना देखा कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बन गया, तो कल मैं क्या करूंगा? सीधा सेक्रेटरी में जाकर कुर्सी में बैठ जाऊंगा? हाँ जी, मैं बन गया हूं आईएएस ऑफिसर, मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। बोले यार पीछे क्या बात कर रहे हो? तो जो हमने सपने में देखा उसके आधार पर हम कोई कार्य नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इसी ढंग से जो हमें अपने जीवन में सुख और दुख अनुभव होते हैं, मान या अपयश मिलते हैं, उसके आधार पर अगर हम कोई क्रिया करेंगे, एक्शन लेंगे, तो वो पागलपन है। सपने कैसे आते हैं? पूर्व जन्मों के हमारे अनुभव, इस जन्म में हमारे कुछ क्रियाएं, वो सपनों के रूप में प्रकट होती हैं, उसके पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। अब उन सपनों के आधार पर हमें एक्शन नहीं लेने चाहिए। जब हम जागृत होते हैं तो सपनों को भूल जाते हैं, इग्नोर करते हैं। हाँ, यह जरूर है कि सपनों के समय हमें कुछ दुख या सुख का अनुभव होता है। कहीं मेरे व्यक्ति बहुत प्रफुल्लित अनुभव करता है, कहीं मेरे व्यक्ति बहुत पीड़ा अनुभव करता है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इट हैज नो वैल्यू। इसी ढंग से इस भौतिक जगत में जितने भी अनुभव होते हैं वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए उसके आधार पर कुछ एफर्ट्स करना मतलब नहीं है, उसका एफर्ट्स भी जीरो। ये शरीर अभी कुछ दिखाई दे रहा है, पहले था नहीं, कुछ समय के लिए दिखाई देता है, फिर लुप्त हो जाएगा। तो इस शरीर से जो भी क्रिया है उसका भी स्टेटस है, इट्स ऑल इल्यूजरी। इसलिए बताया गया है जो कर्म है, कर्म एक भ्रम का चक्र है, साइकिल ऑफ इल्यूजन। आप सब भ्रमित तो नहीं हो रहे? भ्रम का चक्र है कि ये साइकिल ऑफ इल्यूजन, यहां पर एक इल्यूजरी एक्टिविटी दूसरे इल्यूजरी एक्टिविटी को जन्म दे रही है, एक भ्रम है। पुण्य कर्म पाप कर्म, यही भाल यही मन यही सब भ्रम, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं। ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, इसका फल ये है, ये सारा भ्रम है। कर्म का मतलब भ्रम। हम फंसे हैं क्योंकि कर्म हम कर रहे हैं सुख को बढ़ाने के लिए, सुखाए दुख मोक्षाए संकल्प यह कर्मणा। हर एक कर्म के पीछे संकल्प क्या होता है? कि मेरा सुख बढ़े और मेरा दुख कम। सुख भी भ्रम है, दुख भी भ्रम है, एक अच्छा सपना और एक बुरा सपना। सपनों के आधार पर किया हुआ कार्य एक और सपने की ओर ले जाएगा बस, और इसी सपनों के दुनिया में हम जी रहे हैं, मर रहे हैं। ये वास्तविकता से बिल्कुल परे है, ये वास्तविकता नहीं है। हम लोग सब साधना भक्ति में जुड़े हुए हैं। प्रहलाद महाराज तो असुर सहपाठियों को शिक्षा दे रहे थे, तो आप कह सकते हैं ये हमारे लिए थोड़ी है। असुर से पाठ्य, हम कोई असुर हैं क्या? नहीं, हम लोग भक्त हैं, दीक्षित भक्त हैं, हमारे लिए ऐसे नहीं है। लेकिन हम सबके अंदर भी आसुरिक प्रवृत्तियां हैं, है ना। मटीरियल कंसेप्शन, देहात्म बुद्धि मतलब असुर प्रवृत्ति, है ना। तो हमें देह योगी से भक्ति योगी बनना है ना। अभी हम हमारा जो आत्मा का देह से बहुत गहरा संबंध हमने बना लिया है, देह योगी, है ना। हम देह योगी नहीं है, हमने क्या बनना है, हमने भक्ति योगी बनना है। तो ये शरीर के आधार पे, शरीर को आराम देने के लिए जो हम इतने एफर्ट्स करते हैं, इतना हमारे अंदर द्वेष हो जाता है, इतना कंपटीशन हो जाता है, पूरा संसार रात दिन भाग रहा है, ये सारी अज्ञानता है, सारी अज्ञानता है। आप सोचिए, हमारे जो भारतवर्ष में पैदा होने वाला मनुष्य, इतना दुर्लभ जन, देवतागण प्रार्थना करते हैं, वो बेचारा भारत छोड़ के विदेश में चला जाता है, लंदन में जाके डिश वॉशर बन जाता है, प्लेटें धो लेगा, क्यों? पाउंड्स कमाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए। कितनी मेहनत करते हैं, डबल डबल ओवर टाइम करते हैं, 16-16 घंटे काम करते हैं अपने भौतिक स्तर को बढ़ाने के लिए। अरे बढ़ भी गया तो अंततः परिणाम क्या है? क्योंकि इन प्रयासों से हम जीवन की असली समस्या का समाधान नहीं कर सकते। मनुष्य जीवन मिला है जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए। आत्मा तो चिन्ह है, सच्चित आनंद है, आत्मा के लिए इंद्र तृप्ति करना बहुत बड़ी सजा है। आत्मा केवल प्रेम से संतुष्ट होती है, एक्सटेसी चाहिए, वो ऐसी तैसी उसकी हो जाती है, उसको इतनी मेहनत करानी पड़ती है, जाके बेचारा भारत छोड़कर लंदन में जाके होटलों में जूठे बर्तन धो रहे हैं, है ना। और उसके बाद उसने कुछ कर भी लिया, अमेरिका का स्लोगन है वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, मंडे से फ्राइडे खूब मेहनत करो, वहां पे वीकली सैलरी मिल जाती है, है ना। और जो आपको सैलरी मिली फ्राइडे को, सैटरडे संडे खूब एंजॉय करो, खूब जितना कर सकते, पार्टी हार्डर, हार्डर से हार्डर, और फिर मंडे को फिर गधों की तरह काम करो, है ना। ये स्लोगन है, ये जीवन है। क्या है? तत् प्रयासो न कर्तव्य, पागल हो जाओगे, मत करो ऐसा, इसका कोई एंड रिजल्ट जीरो है। तो इस भौतिक जगत में इस कर्मों के इस बंधन से मुक्त होने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। आप समझे, कुछ साइंस पढ़ी होगी बचपन में, फिजिक्स, है ना, तो हमें से याद आ रहा है, फिजिक्स में वर्क की, कार्य की परिभाषा दी जाती थी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक कह रहा हूं मैं, है? जो इंजीनियर स्टूडेंट्स है यही होता ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि समझ लो एक भारी चीज यहां पड़ी है, इसको मूव करना है तो हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाया, बल लगाया, तो उसने कुछ आगे चले गई, हाँ जी, कुछ कार्य किया। आप दिहाड़ी में कुछ मजदूर रखते हैं, जय श्री राधा राधिकर्मन जी, कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बंदेश, तो आपने मजदूरों को कुछ लगाया, लेबर को लगाया, पूरा दिन प्रयास करते रहे, जो लगा के हाइशा, जो लगा के हाइशा, शाम को वापस आए 8 घंटे बाद, भाई क्या हुआ, वहीं का वहीं पड़ा है, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, जाओ, कुछ काम तो किया नहीं आपने, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहां से यहां तक नहीं ला पाए आप, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, है ना। यही भौतिक जीवन है, जो लगा के हाइशा, जो लगा के हाइशा, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जीरो। कैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो? बोले यहां से वहां पहुंच गया, मेरी चाय की दुकान थी, 5-star होटल खोलिए, बोले डिस्प्लेसमेंट जीरो कह रहे हो आप, चाय की दुकान थी मेरी, वो मैं 5-star होटल खोल दिया मैंने, आप कैसे कर रहे? मैंने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, कितनी मेहनत की है, यहां से वहां पहुंच गया। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट देखी जा रही है, जो आपका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया है, वो देखा गया है कि आत्मा कृष्ण के प्रति कितनी उन्मुख हुई है, कितना आत्मा ने अपने आप को कृष्ण की तरफ मोड़ा है, राधा राधे कृष्ण की तरफ मोड़ा है। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये प्रयास करने हैं। नहीं तो यहां पे हम जितना मर्जी प्रयास करते रहे, कभी पाताल में, कभी स्वर्गलोक में, कभी जनलोक में, कभी तपोलोक में, मटीरियल वर्ल्ड के अंदर जो कुछ है वो सारा इल्यूजन है, सब एक सपने के समान है। तो ऐसे बल लगाने का, ऐसे प्रयास करने का क्या फायदा? पूरा जीवन जो लगा के हईशा करते रहो, अंत में मृत्यु सर्वारस्चा, हम सब खत्म, तो ये कोई फायदा है इसका? हम इससे, आप समझ लीजिए, एक व्यक्ति को गाड़ी चलाने के लिए दी गई, आप सब गाड़ी चलाते हैं, और आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, ऐसे ऐसे बंधे हुए, और बोलो स्टीयरिंग से चलाओ, क्या होगा? एक्सीडेंट होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? हाथ पैर बंधे हुए हैं, बोलो ना, ब्रेक को कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो, चलती हुई गाड़ी दे दी हाथ में, थोड़ा बहुत आप कर लेंगे ऐसे, ये हमारी स्थिति है। हम प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने शरीर और मन और इन बुद्धि से ऐसे कार्य करें कि हमें आनंद मिल जाए। नहीं, हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम बंधे हुए हैं, हम नियंत्रित हैं। तो हम अपने शरीर को आगे कुछ भी प्रयास के द्वारा हम इस शरीर को आराम नहीं पहुंचा सकते, सुख नहीं दे सकते। इसलिए प्रहलाद महाराज बता रहे हैं तत्प्रयास होना कर्तव्य। इससे हम अपने बहुत ही महत्वपूर्ण मनुष्य जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं। ये मनुष्य जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। अभी समय हो रहा है 8:34, 15 फरवरी निकल गया। बस अब लाखों लाखों रुपए खर्च करके भी 8:34 सुबह के 15 फरवरी को हम नहीं ला सकते। आयु क्षणम अपि ना लभ्यते स्वर्ण कोटि भी, चाणक्य पंडित ने बोला। एक क्षण को भी हम वापस खरीद नहीं सकते। हम देखते हैं जब किसी का कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट होता है और डॉक्टर बोलता है कि बस शरीर छोड़ने वाले हैं, तो क्या बोलते हैं, कुछ भी बढ़ा दीजिए, है ना, इनसे एक साइन करानी थी प्रॉपर्टी के कागज, अंगूठा लगाना है, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। नहीं, खत्म। एक क्षण भी अगर हमारी आयु 51 वर्ष की है तो बस 51 वर्ष, एक सेकेंड ऊपर नहीं जा सकते। इतनी लिमिटेड है और इतनी महत्वपूर्ण है, इसको हमें उल्टे सीधे प्रयासों में व्यर्थ नहीं गंवाना। इस भौतिक जगत में प्रगति शब्द अप्लाई नहीं होता। There is no progress in this material world। क्योंकि कल हम प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहे थे, प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहां पर हम जीते नहीं हैं, हम क्या करते हैं, प्रतिक्षण मरते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ डाइंग है। आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, आर्ट ऑफ डाइंग है। हर क्षण हम मर रहे हैं। काल के प्रभाव में काल भगवान की क्षय करने वाली शक्ति है। हर वस्तु का क्षय हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, और हम करें हम प्रोग्रेस करेंगे। तभी तो मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान की इस योजना को समझना चाहिए कि भगवान ने इस बौद्ध की रचना कैसे की है। हर चीज क्षय 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 डाउन हो रहा है, और हम करेंगे हम प्रोग्रेस करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। भगवान से पंगे लेंगे हम, भगवान का जो प्लान है उसको माने और भगवान के प्लान की योजना के अनुसार हम कार्य करें, फिर हमारा जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। लेकिन भगवान की योजना के विरोध में जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रगति मैदान सारी की सारी प्रगति मैदान में ग्राउंडेड सब मिट्टी में मिल जाएगा। जब हमें जला दिया जाएगा तो क्या होता है, शरीर जलाने के बाद सारे पंच तत्व को एक थैले में बांधा, डिपॉजिट कर दिया, नए पंच तत्व ले लिए, उसका एक नया शरीर होता है ना, किराए पे। आपको आत्मा को शरीर मिला है, नया शरीर चाहिए भैया, पुराने वाले लाओ, पंच तत्व कहाँ है, ये लीजिए, ये रहा भूमि अग्नि जलवायु, ये राख है, सब लीजिए, नया शरीर दीजिए, चलो नया शरीर, ये हो गया। ये जीवन है कुल मिला के। तो क्या प्रगति है, सब प्रगति मैदान हो गया, सब ग्राउंडेड हो गया, प्रगति अपार्टमेंट भी है ना कोई प्रगति नहीं है। प्रगति चेतना की है, कितनी चेतना में प्रगति की है, कितनी हमारी मानसिकता बढ़ी हुई है, संकीर्ण मानसिकता से कितनी विस्तार हो गया उसमें, ये प्रगति है। इसके लिए प्रयास करना है ना। तो जो भी प्रयास हो हमारे लिए क्या है कि ऐसे प्रयास करने चाहिए जिसका परिणाम सनातन हो। उन प्रयासों से हमें ऐसी वस्तु मिले जिसके ऊपर काल का प्रभाव ना हो, जो प्रकृति के 3 गुणों से परे हो। क्या मनुष्य जीवन में हम ऐसी चीज प्राप्त कर सकते हैं जो सनातन हो? मनुष्य जीवन अध्रुवम है, टेम्परेरी है, लेकिन इसमें हम एटर्नल बेनिफिट, सनातन शाश्वत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो नारद मुनि बता रहे हैं व्यासदेव जी को, तस्य हेतो प्रत्येत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमताम उपरि यथा तल्लभ्यते दुःखनवात् अन्यथा सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमसा। बोले तत्र तस्य हेतो प्रत्येत कोविदो, जो असली बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो किसके लिए प्रयास करेंगे, उस वस्तु के लिए प्रयास करेंगे, न लभ्यते यद् भ्रमति उपरि अधा, ऊपर के लोकों में और नीचे के लोकों में घूमने पे कहीं नहीं मिले, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इस जगत से परे। जो असली बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे जो इस ऊपर से लेकर नीचे के लोकों तक कहीं नहीं मिलती, इंपोर्टेड, इस मटेरियल वर्ल्ड के नहीं, बाहर से स्पिरिचुअल वर्ल्ड से इंपोर्टेड वस्तु, है ना। इंपोर्टेड वस्तुओं का वैसे बहुत क्रेज रहता है ना। प्रभुपाद जी बताते हैं, कथा सुनाते हैं कि बंगाल में एक गाना है, उसमें ये बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति गोरे साहब से रिलेटेड हो, विलायती हो, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, है ना। कि गोरे साहब में विलायत से ये फॉरन से आई है। तो बंगाल में एक व्यक्ति कुत्ते का मांस बेच रहा था। अब भारत में कोई भी कुत्ते की मीट नहीं खाता ना, डॉग मीट कोई नहीं खाता, लेकिन उसको बेचना था। तो उसने क्या बोला, रहे अरे ये साधारण कुत्ते का मांस नहीं है, ये स्वयं वायसराय ने मारा है, बड़े साहब ने, जो लॉर्ड थे हमारे वायसराय जी अंग्रेज के, उन्होंने इसको मारा है, उसका कुत्ता है, उसको मारा है, लो लो। तो तुरंत बिक गया। तो कोई भी चीज इंपोर्टेड हो उसकी वैल्यू है, लेकिन हमें कौन सी वस्तु इंपोर्ट करनी है, इस संसार की नहीं, अमेरिका से नहीं, स्वर्ग लोक से नहीं, कहीं से नहीं, कहां से, आध्यात्मिक जगह से, ना? जो ऊपर से लेकर नीचे के लोगों तक कहीं उपलब्ध नहीं है, उसके लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। बाकी संसार के सुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, वो तो वैसे ही मिल जाता है। एक चींटी के लिए आहार निद्रा भय मंथन की व्यवस्था है, बिल में रहने वाले सांप के लिए आहार निद्रा भय मंथन की व्यवस्था है, जंगल में रहने वाले सभी जानवरों के लिए आहार निद्रा भय मंथन की व्यवस्था है, जंगल में रहने वाले आदिवासियों के लिए आहार निद्रा भय मंथन की व्यवस्था है, स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के लिए आहार निद्रा भय मंथन की व्यवस्था है। वो तो मिलेगी ही मिलेगी, सर्वत्र लभ्यते देवात, अपने आप मिल जाएगी। उसके लिए प्रयास नहीं करना, प्रयास उसके लिए करना है जो ऊपर से लेकर नीचे के लोगों तक कहीं उपलब्ध ना हो। अगर असली बुद्धिमान व्यक्ति अगर हम अपने आप को समझते हैं तो उसके लिए प्रयास कीजिए। ये नारद मुनि का संदेश है। तो हम सबको अपने जीवन के जो परम हमारा लक्ष्य है, क्षेमम विन्दते क्षेमम, उसके लिए प्रयास करना है। तो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है, ये हम अभी भागवतम में कई ऐसे श्लोक आते हैं जैसे मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को बताया गया है। देखा जाए तो हम जितने भी प्रयास कर रहे हैं उसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें आनंद की प्राप्ति हो, है कि नहीं। हर कोई अपने सुख को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है, और हम लेकिन हमें जो अज्ञानता है उसके कारण हम सोच रहे हैं कि यह आनंद हमें प्राप्त होगा अपनी इंद्र तृप्ति से, शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करके। और शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम सारे प्रयास धन अर्जन के लिए करते हैं कि इससे हम इंद्र तृप्ति करके आनंद प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो जब हम धन अर्जन करते हैं, आप सब करते हैं ना धन, तो धन से हम सुख कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे अब किसी के पास धन है, माताजी हैं, बहुत उनके पास धन है, बैंक बैलेंस है, बहुत नोट है उनके पास, तो ऐसा तो नहीं कि नोटों की साड़ी डालेंगे, है ना। किसी देखा माताजी को कि ऐसे कपड़े डाले, नोट ही नोट सारे ऐसे, है ना, हजार रुपए के नोटों से साड़ी बनी हुई है, या नोटों का एक नेकलेस डाला हुआ है, ऐसे ऐसे डालते ना कि उनको हार में नोट लगे होते हैं, नहीं पूरा नोट नोट है। या फिर हमने एक बहुत बड़ा बंगला बनाया, उसमें मार्बल नहीं लगा, खाली नोट नोट लगे हुए हैं कागज के, ऐसा ऐसा होता है क्या? तो क्या करते हैं जो पैसा, उसे हम क्या करते हैं? खरीदते हैं, है ना। तो जो पैसा है हमें परचेजिंग पावर देता है, खरीदने की शक्ति देता है, जिससे हम कुछ भी खरीद सकते हैं, और समझते उस खरीद से, उस वस्तु को खरीद के, फैसिलिटी को प्राप्त करके हम सुख प्राप्त कर लेंगे। ये हमारा मिसकंसेप्शन है, लेकिन हम देखते हैं कि उस सुविधाओं को खरीद भी लें तो हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। बता रहे थे एक भक्त हमें कि एक बहुत बड़े सेठ जी हैं, उन्होंने 5 लाख का डबल बेड खरीदा, डबल बेड 5 लाख रुपए का, लेकिन बेचारे जब सोते हैं उस पर तो नींद नहीं आती है, है ना। कितनी बड़ी विडंबना है, इतना प्रयास किया, 5 लाख का डबल बेड खरीदा, नींद नहीं आ रही, आनंद सुख नहीं है, है ना। तो ये सारे के सारे प्रयास क्या हैं? परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए, धन को अर्जन करने के लिए। तो ऐसी वस्तु खरीदें जो इस संसार की ना हो, ऐसा धन हो जो इस संसार का ना हो, वो कौन सा है? गोलोक प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन। तो किसके लिए प्रयास कर रहे हैं? वो प्रेम धन को अर्जन करने के लिए, गोलोक से आएगा जो कि, और उस गोलोक से जो प्रेम धन को अर्जन करेंगे तो उस प्रेम धन से हम क्या परचेजिंग पावर मिलेगी, किसको खरीद पाएंगे? स्वयं कृष्ण को, कृष्ण को जो कि षड ऐश्वर्य पूर्ण है, उस गोलोक के प्रेम धन से हम कृष्ण को खरीद लेंगे तो कितना आनंद आएगा। जो हमारे आनंद का आधार है वो प्रेम होना चाहिए, तभी तो हम बोलते हैं निताय गौर प्रेमानंद है ना, प्रेम आनंद है, आनंद प्रेम पर आधारित है। हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा अवलोकन करो आमी बड़ो दुखी। हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु नित्य आनंद में है, क्यों? प्रेमानंद सुखी, उनके पास प्रेम है अभी वो सुखी है, आनंद में है। कृपा अवलोकन करो, मुझ पर दृष्टिपात करो, अमी बड़ो दुखी, मैं बहुत दुखी हूं। इसलिए नहीं कि मेरे पास बड़ा बंगलो नहीं है, मेरे पास BMW नहीं है, इसलिए दुखी हूं कि मेरे हृदय में प्रेम नहीं है। तो हमें जो प्रयास कर रहे हैं ये प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास करना है, यही आत्मा की खुराक है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा के अभाव में लोग ये नहीं जानते कि आत्मा क्या है और आत्मा की क्या आवश्यकता है। आत्मा की यही आवश्यकता है कि वो कृष्ण से प्रेम करे। अगर हम कृष्ण से प्रेम करना सीख जाते हैं तो हमेशा हम आनंद में रहेंगे। तो कृष्ण प्रेम कोई एक कंसेप्ट नहीं है कि जो हम भविष्य में प्राप्त करेंगे तो हम आनंद में रहेंगे। हम लोग सुबह सुबह रोज बोलते हैं जीवन का, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। तो हम सोचते हैं कृष्ण प्रेम, आप में से कोई कह सकता है कि अभी हमारे पास कृष्ण प्रेम है? क्या लगता है अभी भविष्य में मिल जाएगा? ये लगता है ना, एक ऐसी एक चीज है कृष्ण प्रेम जो भविष्य में मिल जाएगी। नहीं, हमें कृष्ण प्रेम को अभी वर्तमान में लाना है। हमें ऐसा जीवन जीना है कि हम हर क्षण कृष्ण प्रेम में जिए। उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए हमें प्रयास करने हैं, और यही प्रयास, यही प्रैक्टिस कहलाती है साधना भक्ति, डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस। आत्मा की केवल एक ही इच्छा है कि वो कृष्ण को आनंद दे सके। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे वाले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना कहलाता है काम, कृष्ण को सुख पहुंचाना कहलाता है प्रेम, और आत्मा केवल प्रेम से ही संतुष्ट हो सकती है। यानी कि मैं केवल कृष्ण प्रेम से ही संतुष्ट हो सकता हूं। जब मैं प्रेम से ही संतुष्ट हो सकता हूं तो मुझे भविष्य के बारे में क्या सोचना कि भविष्य में प्रेम मिलेगा तब संतुष्ट होऊंगा? नहीं, उस प्रेम को जो कि एक सनातन सत्य है उसको मैंने वर्तमान में लाना है। यानी कि इसका अभ्यास करना है कि अभी हर क्षण हर प्रयास मेरे कृष्ण प्रेम में होने चाहिए, और यही प्रैक्टिस, यही प्रयास कहलाती है साधना भक्ति, डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस। इसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कृष्ण को आनंद देने की प्रैक्टिस, ये हमारी साधना भक्ति है, प्रेम करने की प्रैक्टिस। तो ये हमें प्रयास करने हैं, ये हमारे प्रयास होने चाहिए, ना कि हमारा क्या है अभी पूरे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया, जो थोड़ा बहुत समय बचा उसमें 16 माला कर ली, हमारा जीवन हो गया, और क्या करें, यही तो करना है ना। और फिर अभी जरूरत क्या है, अक्सर जो हमारे दीक्षित भक्त भी हैं बुरा ना माने तो वो भी ये सोचते हैं कि अभी युवा अवस्था में तो क्या करना चाहिए, खूब धन कमाना चाहिए, खूब पढ़ाई करो बच्चों, बड़े अच्छे बच्चे बनाओ और बहुत अच्छी नौकरी कर लो, बढ़िया से एक लड़की से आपको विवाह करा देंगे, तब आप सोचना 16 माला करने के लिए, है ना, सब कुछ सेटल बैटल कर लो। तो हमें माता पिता हमें चिंता से मुक्त कर दो, हमें कोई चिंता ना हो कि आपके आहार निद्रा भय मिथुन की व्यवस्था हो गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद समय बचे तो आप माला कर सकते हो, आध्यात्मिक जीवन के लिए जाइए फिर, है ना, है कि नहीं। हमारे दीक्षित भक्त भी हैं हम जानते हैं, वो भी अपने बच्चों को भक्तों से दूर रखते हैं, दूर से प्रणाम करना, ज्यादा नजदीक मत जाना, आपको संक्रामक रोग हो जाएगा, इनके पास एक इन्फेक्शन है, कुछ भी बोलते हैं पता नहीं क्या निकलता है मुंह से, कुछ भी खिलाते हैं पता नहीं क्या उसमें इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन हो जाएगा, दूर से, ज्यादा पास में मत जाना, इनके सांस से कुछ कीटाणु निकलते हैं, और कभी इनके साथ खाना पीना तो बिल्कुल मत, है ना, कुछ खिलाते हैं क्या है, तो दूर से। क्योंकि हमने तो अब दीक्षा लेके हमारा तो हरी बोल हो गया लेकिन अब इनको बचा के रखना है, इसका तो हमारा तो कैरियर खत्म, हम तो कैरियर डबे हो गए, हमारा कैरियर डबे हो गए खत्म। लेकिन ये है बच्चे तो पहले कैरियर बना ले, खड़ा हो जाओ अपने पाँव पे और फिर नाचियो, फिर पाँव पे तो खड़ा हुआ लेटक मगा रहे फिर नाचेगा कैसे, पहले पाँव पे खड़ा हो जा अपने को सेटल कर ले फिर खूब नाचेगा। तो तब तक प्रयास करो, उनको गारंटी है कि मेरा बच्चा 100 साल तो जिएगा ही जिएगा। तो पाजी कह रहे हैं अगर कोई 5 साल का भी है तो इसका मतलब क्या है कि वो 5 साल मर चुका है। अगर मेरा बच्चा 1 घंटे का भी है, बोला 1 घंटा ये मर गया, ऐसे कैलकुलेट करना चाहिए। हैप्पी बर्थडे, आप 50 साल के हो गए, 50 साल में मर गया, 15 साल में मर गया, अरे कभी मृत्यु आ जाएगी, आप पहले प्लानिंग करके बैठे हो, पहले पांव पे खड़ा हो जा रहे, लेटी मर जाएगा। फिर जितना हो सके शुरू से ही कुमारम आचरत प्राग्यो, 5 साल की आयु से ही आध्यात्मिक शिक्षा देनी शुरू कर दो। बच्चे को मालूम होना चाहिए मेरी आवश्यकता ही आहार निद्रा भय मैथुन नहीं है, मेरी आवश्यकता है प्रेम, उसी की प्रैक्टिस शुरू करनी है। माता पिता को अपने उदाहरण से सिखाना है और बच्चे को भी यही सारा कल्चर देना है। इसीलिए भारत का भारत होने के पहले मनुष्य जन्म जा, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, इस ज्ञान को अपने जीवन में अनुकूल करना और दूसरे को सिखाना है। एक बार बॉम्बे जुहू मंदिर के प्रेसिडेंट हिज ग्रेस रसराज प्रभु, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं वो, एक लड़का आया उनके पास ब्रह्मचारी बनने के लिए, पीछे उनके पिताजी आ गए रोते हुए, ये कोई उम्र है ब्रह्मचारी बनने की, दो वापिस दो। बोले क्या है, बोले बाद में, पहले कुछ सेटल हो जाए, पढ़ ले लिख ले बन ले उसके बाद करेगा भक्ति। बोले ठीक है, आपकी क्या आयु है, 60 वर्ष, सब कुछ कर लिया, हाँ लड़के को ले जाओ आप आ जाओ आपने कर लिया ना सब कुछ, ठीक है आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये उम्र थोड़ी है, जा बेटे वापिस जा, चलो आप आओ, आ जाओ, ये क्या बात कर रहे हो, क्यों क्या बात कर रहे हो, जाने दो इसको, अरे जो कर रहा है उसको करने दीजिए, भक्ति से डरना थोड़ी है, प्रेम से कोई डरता है, कितना इल्यूजन है हमारा। और हम लोग भी भक्ति कर रहे हैं, अपने आप को रोक के रखा हुआ है, हम भी प्रयास पूरे हृदय से नहीं करते हैं, हमें डर है अगर इंद्र तृप्ति हमसे छिन गई तो हमारा क्या होगा, अभी भी हम पूरे प्रयास नहीं करते भक्ति में। तो अगर जीना है तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्ति करनी है तो गोपियों के अनुगत होकर, गोपियां पूर्ण रूप से भूल जाती हैं अपने सुख की रंच मात्र भी वासना नहीं, केवल कृष्ण को आनंद देने के लिए है। तो इसलिए हम जो साधना भक्ति कर रहे हैं इसमें बहुत ही हृदय से हमें प्रयास करने चाहिए, हमें देखना चाहिए रोज अपने, जैसे एक दुकानदार का व्यवसाय होता है, वो अपने दुकान के लिए व्यवसायत्मक बुद्धि होता है, इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एक हा गुरु नंदना, हमें भक्ति को कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक प्रोफेशन व्यवसाय की तरह, ये हमारा मेन बिजनेस है, भक्ति कोई हमारी हॉबी नहीं है, एक टाइम पास एक्टिविटी नहीं है, हम इस कॉम में एक स्पिरिचुअल क्लब के लिए नहीं आते हैं, पंजाबी बाग क्लब है, लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, इस्कॉन है ना, एक इस्कॉन है बस, कभी कभी आगे थोड़ा नाच लिया गा लिया भक्तों के दर्शन कर लिया, अच्छा नहीं, ये हमारा मेन बिजनेस है, ये हमारा धर्म है, ये कर्म नहीं है, धर्म है हमारा, ये हमारा जीवन है, सारे प्रयास इसको आगे बढ़ाने के लिए, चेतना को विकसित करने के लिए। प्रैक्टिस का मतलब है कि प्रैक्टिस के बाद इंप्रूवमेंट होने चाहिए, किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, इंप्रूवमेंट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो ना, इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं साधना भक्ति स्टेज ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट। तो हम देखें इंप्रूवमेंट के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें कि ये भक्त 15 साल पुराना हो गया, ये भक्त अब ये हो गया, नहीं, इंप्रूवमेंट प्रभुपाद कहते हैं खुद को सर्टिफिकेट दीजिए, देखिए इंद्र तृप्ति के प्रति रुचि कितनी कम हुई है, मालूम चल जाएगा हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर इंद्र तृप्ति के प्रति रुचि कम नहीं हो रही, और प्रैक्टिस, गो टू द बेसिक्स, ABC, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग, ठीक हो रही है नहीं हो रही है, ये प्रैक्टिस, कितनी प्रैक्टिस कर रहा हूं, कितने प्रयास कर रहा हूं स्वार्थ रहित होकर सेवा करने की, कितना प्रयास कर रहा हूं ध्यान पूर्वक जप करने की। अगर मैं ध्यान पूर्वक जप करने के लिए प्रयास कर रहा हूं तो मैं नाम अपराध से नामाभास की स्थिति में आ जाऊंगा। नाम अपराध और नामाभास के अंदर केवल एक ही अंतर है, प्रयास का, किसी ना किसी ढंग से 16 माला खत्म कर ले नाम अपराध, किसी ना किसी ढंग से अच्छे ढंग से हरि नाम का जप कर लूं नामाभास, और नामाभास होते ही सारे पापों से मुक्ति, मुकुंद के चरणों की शरण मिल जाएगी, पाप भी खत्म, पाप करने की प्रवृत्ति भी समाप्त, और हम निष्ठा के स्तर पे आ जाते हैं। कितना सरल है, केवल प्रयास करना है ध्यान पूर्वक सुनने का, बस हम नाम अपराध से नामाभास में आ जाएंगे। लेकिन हम प्रयास ही नहीं करेंगे, ठीक है चल रहा है जैसे ठीक है, किसी ढंग से माला खत्म करें, तो ये प्रयास कर रहे हैं जिससे हम जल्दी से जल्दी आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त कर सके। ये जो भौतिक जीवन है ये रुग्ण अवस्था है, डिजीज कंडीशन है। जब हमें कोई बीमारी होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है डाइट में परिवर्तन करो, अपनी खुराक बदलो और ये दवाई दो। हमारी डाइट क्या बदलनी है, जो हम क्रियाएं पहले कर रहे थे अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अब हम उन क्रियाओं को बदलना है और कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करने हैं, ये हमारी डाइट है। और हमारी दवाई क्या है, दवाई है कि निरंतर हम क्या करें, नाम कीर्तन सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कॉन्शियस का अर्थ है, एक सीनियर डिवोटी बताते हैं, टू नो व्हाट यू आर एंड टू बी व्हाट यू आर। कृष्णा कॉन्शियस का अर्थ है पहले ये जानना मैं कौन हूं और वैसे ही एक्ट करना, ये जानना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, एंड बी यू आर, और जैसे हो जो आपकी वास्तविकता है उसके अनुसार कार्य करना। हम ये नहीं जानते कि हम कौन है, ये जा से ये जान गए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन क्या हम वैसा कार्य भी कर रहे हैं, क्या हम कृष्ण दास की तरह सारी सेवाएं कर रहे हैं, क्या हम उसके कृष्णदास दासों का दास बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी से किसी व्यक्ति ने पूछा, स्वामी जी डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्रभुपाद बोलते हैं आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। फिर उसको रोका, यस आई हैव वन प्रॉब्लम, आई ऑलवेज थिंक बिग, मैं बहुत बड़ा सोचता हूँ। इसीलिए हमको भी मनुष्य जीवन में बहुत बड़ा सोचना है, और हम पहले से ही सोच के बैठ जाएंगे नहीं नहीं कृष्ण प्रेम मुझे क्या मिलेगा, मेरी क्या औकात है, मैं तो बहुत ही तुच्छ जीव हूँ। हाँ तुच्छ हूं, लेकिन मैं तुच्छ जीवी महान आत्मा बन सकता है, तुच्छ जीवात्मा को महान आत्मा बनाना है। प्रभुपाद बोलते हैं ये आंदोलन बनाया है मैंने महाजन बनाने के लिए। हम सब इस कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, केवल हमें प्रयास करने हैं, हमारे प्रयास से हम भगवान की कृपा को आकर्षित करेंगे। तो वो प्रयास अभी से शुरू, ये नहीं एक धारणा है कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम कोई धारणा नहीं है, कृष्ण प्रेम एक परम सत्य है, एक सच्चाई है। इस कृष्ण प्रेम पे हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। आत्मा और भगवान श्री कृष्ण के बीच के संबंध को केवल एक ही शब्द से संज्ञा दे सकते हैं, और वो है प्रेम। कृष्ण और आत्मा के बीच में एक ही शब्द है जो है प्रेम। तो इसलिए हमको निरंतर इसका अभ्यास करते रहना चाहिए कि हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें। और देखिए इस प्रयास का लाभ क्या है, अगर समझ लीजिए बाय चांस हमारा जीवन समाप्त हो जाता है और हम कृष्ण प्रेम को पूर्णतः प्राप्त नहीं भी कर पाते, तब भी क्या कोई नुकसान नहीं है, है ना, क्या होगा, शुचिनाम श्री मताम गेह योग भ्रष्ट विजायते। बहुत लंबे समय तक हम उच्च लोकों में, स्वर्ग लोकों में जाएंगे, बढ़िया सोमरस अप्सराएं नंदन वन आराम से, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता एक भौतिकवादी व्यक्ति, उसके लिए स्वर्ग क्या है, अमेरिका, वहां जाके एक बर्तन धोता है या कंप्यूटर पे रात दिन लगा रहता है तब जाके कुछ नोट कमाता है। लेकिन केवल हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने से अगर उसको हम शुद्ध तरीके से नहीं भी कर पाते तो स्वर्गलोक में चले जाएंगे। बहुत लंबे समय से रहने के बाद वापिस आगे कोई कीड़े मकोड़े नहीं बनेंगे, एक बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में हमारा जन्म होगा या वैष्णव परिवार में जन्म देंगे, फिर से आगे शुरू कर देंगे, इसमें तो कोई नुकसान है ही नहीं, क्या नुकसान है, दोनों ही हाथों में लड्डू है, अलेक्जेंडर के दोनों हाथ खाली थे दोनों ही हाथों में लड्डू है। अगर हो गए तो कृष्ण प्रेम सीधा भगवान के साथ नाचेंगे गाएंगे खेलेंगे, इनकम्प्लीट रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इंद्र की सभा में चले जाएंगे थोड़ा वहां फिर देख के फिर नीचे आ जाएंगे तो आनंद ही आनंद है इसमें, तो दोनों हाथों में लड्डू है। और अगर नहीं नहीं इसको छोड़ो पहले खूब मेहनत करो हम होंगे कामयाब, अलेक्जेंडर ने कितनी मेहनत की, वो जब मरा तो क्या था, ऐसे दोनों हाथ खाली कुछ नहीं, है ना। तो इसलिए हमको अपने बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तस्य हेतु प्रत्येत को भी दो, अगर हम वास्तव में बुद्धिमान है तो हमें उस चीज को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जो इस भौतिक जगत में कहीं भी प्राप्त नहीं होती। और कृष्ण प्रेम हमें एक बहुत दूर का सपना नहीं है, कृष्ण प्रेम वास्तविकता है और हम सपनों की दुनिया में रह रहे हैं। ये कर्म बंधन से मुक्त करने का भक्ति सनातन सेवक ठाकुर महाराज कहते हैं एक ही उपाय है कि हम साधना भक्ति को बहुत तीव्रता से करें, प्रैक्टिस करें। तो हमेशा हम अगर हम अलर्ट रहेंगे, होता क्या है जब हम ये बातें सुन लेते हैं तो बड़ा ठीक है, उत्साहित हो जाते हैं, जब बाहर जाते हैं ऑफिस का प्रेशर, गाड़ियों का प्रेशर, ये प्रेशर तुरंत जो हमारा रिएक्शन तो वही शुरू हो जाता है। तो क्या है, हमेशा हम प्रयास करें कि अपने आप को हम सत्वगुण में रखें। श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं अगले श्लोक के बहुत ही सुंदर उसमें बता रहे हैं कि वन शुड डिस्टिंग्विश द गोल ऑफ लाइफ फ्रॉम द लाइफ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। हमारे जीवन में समस्याएं बहुत हैं, लेकिन उन समस्याओं के बीच में अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए, अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान जाना चाहिए। इसके लिए सत्वगुण की आवश्यकता है। सत्वगुण में रहेंगे तो हम अपने श्रेयस को जान पाएंगे। और रजोगुण और तमोगुण में क्या होता है, हम बहुत इंपल्सिव होते हैं। इंपल्सिव का अर्थ है हमेशा रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्ट का क्या होगा, प्रेयस, जो हमें प्रिय होगा वही कर देंगे। हम सोचेंगे नहीं कि लॉन्ग टर्म में इसका लाभ होगा कि हानि होगी, ये मुझे परम लक्ष्य की तरफ ले जाएगा या परम लक्ष्य से दूर ले जाएगा। तो इसलिए हमेशा एक अलर्टनेस बहुत आवश्यकता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। तो ये अलर्टनेस रखेंगे, हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे तो माया के प्रभाव से हम बच सकते हैं, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से बच सकते हैं। अपने आप को सत्वगुण में स्थित करने का प्रयास करते रहें और इस ढंग से हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा हम मनुष्य जीवन व्यर्थ गवा देंगे। कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, आप सब जानते हैं कल क्या था, वैलेंटाइन डे। तो भगवान के कितने विशेष प्रबंध हैं। एक तरफ था वैलेंटाइन डे, कितना महत्वपूर्ण दिन, और एक दिन हम सब भक्तों ने था नरोत्तम दास ठाकुर जी का प्राकट्य दिवस, आविर्भाव दिवस। देखिए क्या क्या कंट्रास्ट, एकदम है ना कंट्रास्ट। एक वैलेंटाइन डे और एक तरफ नरोत्तम दास ठाकुर जी, है ना। तो वैलेंटाइन डे जो मना रहे हैं उसके लिए नरोत्तम दास ठाकुर ने हरी हरी विफले जन्म गवाए, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया भुजिया विष खाई ना। इससे पहले कितने लोगों ने गुलाब का फूल दिया है और कितने कष्ट पाए हैं, फूल और कांटे हैं। लेकिन अगर यही, लेकिन भक्त लोग हमारे जो बाहर फूल वाले खड़े हो बड़ा स्मार्ट है, उन्होंने गुलाब के फूल बाहर बिकते वही गुलाब के फूल ले आए, तो लोगों ने गुलाब के फूल लिए और राधिका मंजी के चरणों में डाले, तो ये अच्छा है, दिस इज द राइट वे। कई भक्तों ने वैलेंटाइन कार्ड भी दिया राधिका रमन जी को, तो ये अच्छा है। तो हरी हरी विफले जन्म गवाए, तो ये देखा देखी में सब लोग ऐसे कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को पूछ लीजिए, भाई साहब वैलेंटाइन का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं पता। कहता किसी को वैलेंटाइन क्या है, कुछ नहीं पता किसी को। लेकिन मनुष्य जीवन ऐसे निरर्थक कामों के लिए नहीं है, हमें दिशा दिखानी है, हमारा कर्तव्य है। हमारे पास एक टॉर्च लाइट है, लोग अंधकार में हैं, भक्तों के जीवन में परिवर्तन होना ही चाहिए। भक्त लोग भी बाहर की दुनिया को देखकर वैसे व्यवहार करेंगे तो धिक्कार है। तो हमें जानना चाहिए कि ये असली प्रयास है, इससे हमें प्रेम प्राप्त होगा। असली प्रेम क्या है, प्रेम के बिना हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, और प्रेम बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बस ये करते ही हमारा कनेक्शन बन जाता है और सारे के सारे आध्यात्मिक शक्ति का संचार हमारे अंदर होता है और इसको खूब हम बांटे। हरे कृष्णा। इसे कोई प्रश्न
ये सुना था कि जो भगवान ने जो सृष्टि की रचना की वो की अपने आनंद के लिए, और आज जैसे कि शुरू के लेक्चर में बताया कि भगवान ने बड़े अनविलिंगली इस सृष्टि को बताया, तो दोनों चीजों को कैसे समझा जाए, और दूसरा है कि साधना भक्ति को कैसे तीव्रता से किया जाए।
हाँ देखिए, भगवान का तो हर कार्य, भगवान आत्मा राम है, जो अनविलिंगली बोला कि ऐसा नहीं है कि भगवान ने भौतिक सृष्टि की रचना अपनी इच्छा से की। बच्चा है, माता पिता का एक बच्चा जिद्दी है कि मुझे गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलानी है। माता में जानते हैं गाड़ी नहीं चला पाए, बस प्लास्टिक की गाड़ी ला देते हैं, ठीक है चलाओ, या फिर उसको अपने गोद पे बिठा के उसको लगाते हैं कि देखो तुम चला रहे हो, दैट वे। सो अगर वो बच्चों की इच्छा पूरी कर रहे हैं, उनको आनंद भी मिल रहा है, साथ में उसको बोले कि व्यर्थ के काम कर रहे हैं, समय व्यर्थ गवा रहे हैं, दैट वे इट इज टेकन। और साधना भक्ति में हम तीव्रता ला सकते हैं कि हम कभी भी गुरु के आदेशों को ना भूलें। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है भक्ति में, कुछ सालों के बाद हम ढीले पड़ जाते हैं। जो क्रियाएं अभी हमें उत्साहित करते हैं, जो शिक्षाएं, जो वचन अभी हमें प्रोत्साहित करते हैं, बाद में रूटीन लगते हैं। बहुत हो गया, बहुत सुन लिया, है ना, मालूम है क्या बोलने वाले हैं, है ना, सब मालूम, पहले से मालूम है ना। तो इससे बचना चाहिए, ये मन की समस्या है। मन हमारा इतना खतरनाक है कि बड़ी से बड़ी आध्यात्मिक वस्तु को ये भौतिक बना देता है। गुरु, साधु, शास्त्र, अर्च विग्रह सब धीरे धीरे भौतिक लगने लग जाते हैं। तो साधना भक्ति का एक अंग ये भी है कि हम अपने अंदर विनम्रता और सहनशीलता का अनुशीलन करने का प्रयास करें। जितना हम विनम्रता से और सहनशीलता से भक्ति के अंगों का पालन करेंगे प्रारंभ से ही, उतना हमारे अंदर भक्ति नई बनी रहेगी, फ्रेश रहेगी। और जितना हम इसको इग्नोर करेंगे कि ठीक है विनम्र हो जाएंगे, सहनशील हो जाएंगे, अभी तो मैं ऐसा ही हूँ, तो कुछ ही समय के बाद ये भक्ति के जितने भी अंग हैं हमें मंडेल लगेंगे, भौतिक लगना शुरू हो जाते हैं। तो इस सिपंज के जैसे वो कहते हैं ना, पोलियो ड्रॉप्स पहले डाल देते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि आगे क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उसके लिए पहले से ही सावधान रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो इस समस्या से हम बच सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी, ऑल ग्लोरी टू श्री प्रभुपाद। मेरा एक प्रश्न है, जैसे भगवत गीता में श्लोक आया है, ना कर्म नाम अनारंभन अनैष्कर्म्यम पुरुषोष्ण दे, नॉट जस्ट बाई एब्सटेनिंग वर्क वन कैन अचीव फ्रॉम रिएक्शन, तो वो आज से कैसे रिलेटेड है?
वेरी नाइस, थैंक यू, आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं इस पार्ट को कवर नहीं कर पाया। जैसे बोला तब प्रयास होना कर्तव्य, हम प्रयास नहीं करने चाहिए, उन्होंने बोला कि गीता में लिखा हुआ है कर्म तो करने ही पड़ेंगे शरीर के पालन के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं हम जाके कल सब दुकान बंद कर दें, ऑफिस जाना बंद कर दें, तत् प्रयास होना कर्तव्य। बोला गया जो मिलना है मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भगवान चौथे अध्याय का 22वां श्लोक है, बताते हैं शायद, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर सम्मा सिद्धो विसिद्धो चो कृत्वापि नाभिपाव्यते, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जो अपनी इच्छा से अपने कर्मों के फल से जो हमें लाभ या हानि प्राप्त हो रही है उसको हम स्वीकार करें, उससे संघर्ष ना करें, है ना, अपने कर्मों के फल को हम संघर्ष करना, उसको रोकने का प्रयास ना करें, उसको एक्सेप्ट करें। सो उससे क्या होगा, हम इस कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। तो जो हमें मिनिमम चाहिए शरीर के पालन के लिए उतना करें, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, अपने इच्छा से अपने आप जो हमें लाभ या हानि प्राप्त होगा उसमें हम संतुष्ट रहें। ठीक, अंतिम प्रश्न आज।
हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी आपने बोला भी कि जीवन के लिए कृष्ण प्रेम जरूरी है, उस कृष्ण प्रेम को पाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, कैसे पाना है उसको, क्या तरीके हैं उसके, क्या एक ही तरीका है उसका नाम लेते रहना या कोई और तरीका भी है उसको करने के लिए, पाने के लिए?
हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ते 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 अतिरम्यता, कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। हरि नाम लेने के हमें फैसिलिटीज अच्छी मिलती रहे, इसके लिए भक्तों का संग, शास्त्रों का अध्ययन, केवल प्रसाद का सेवन और पाप कार्यों से बचना, ये सब हमें हरिनाम लेने में सहयोग करेंगे।
एक तरीका और भी जो मुझे पता चलता था बाकी जगह जाने से भी, कि दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को मदद करना, गरीबों की मदद करना, ये भी आपको श्री कृष्ण के पास लेके जाता है, तो या ये एक तरीका हो सकता है क्या?
दूसरों की मदद करनी चाहिए, और भगवान गीता में कहते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं वो ये सबसे ज्यादा प्रिय है। लेकिन मदद आध्यात्मिक स्तर पे, आत्मा के स्तर पे सबसे बड़ी मदद है कि मुकुंद चरणामुजम, हम उनको मुकुंद के, कृष्ण के चरणों में ले आए। जो प्रहलाद महाराज हैं अपने सहपाठियों की असली मदद कर रहे हैं, है ना, उनको चॉकलेट नहीं दे रहे कि चलो रिसेस पीरियड है मैं आप सबके लिए चॉकलेट लाया हूँ, है ना, वो उनको कंबल नहीं बांट रहे, वो उनको क्या दे रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान बांट रहे हैं, ठीक है ना। तो ये प्रहलाद महाराज सबसे वेलफेयर, मोस्ट एलिवेटेड वेलफेयर एक्टिविटी कर रहे हैं, इससे हम भगवान को प्रिय होंगे, ठीक है। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, कोटि वैष्णव वृंद की, ग्रंथ राशि में भागवतम की, हिताय गौर प्रेमानंदे।